कल्पतरुभ्यश्च कृपाश्रीव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरकृषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्राप्रदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायुनो कातरयाजु पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भेदे तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि नजमामि त्वया दिन इति दीक्षे तं मैं अपने आराध्यतम श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडवत पढ़ती ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी ब्रह्मचारी और वैष्णव उपस्थित महोदयगण और माताएं और बेटी और बहन, अभी हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं। वृंदावन का ये भाव सुना आप लोगों ने, कैसे कृष्ण के प्रति उनका विरह है, यही प्रेम हम लोगों का स्वाभाविक धर्म है। इसी प्रेम को श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। हम लोग जितने भी हैं प्राणी मात्र इस जगत में, चाहे वृक्ष लता के प्राण हो, चाहे पशु पक्षी कीट हो, मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, ये सभी भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। उनको बिछुड़ जाने से हम उनको अभी माया की वजह से भूल गए हैं, और जब से सृष्टि आरंभ हुई तभी से हम उनको भूले भटके हुए हैं। कभी मनुष्य योनि में आते हैं, कभी देवताओं की योनि में आते हैं, कभी पशु पक्षियों कुकर सुकर इत्यादि मत्स्य मछली इत्यादि के जन्म हो चुके हैं, किंतु हम लोगों का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं, वे जीवों पर करुणा करके व्यास रूप में आए और उन्होंने वेदों के विभाग किए, उपनिषदों का भी प्रकाश किया, पुराणों को प्रकाश किया, महाभारत को प्रकाश किया, उसमें गीता को भी प्रकाश किया, और अंत में सम्यक्प्राप्त स्थान में अपने आश्रम में बड़े दुखी हो रहे थे। उस समय उनके गुरु जी नारद जी आए और बोले, तुमने तो धर्म का तत्व सर्वत्र लिखा, वेदों का विभाग किया, वेदांत शास्त्र की रचना की, ब्रह्म सूत्र भी लिखा, सारे पुराणों को प्रकाश किया, तो तुम दुखी क्यों नजर आ रहा है, तुम्हारी आत्मा शांत नहीं है क्यों? अजय गुरु जी, यही तो रोग है, जो रोगी अपने आप नहीं समझेगा डॉक्टर समझेगा, वैद्य लोग समझेंगे, आप हमारे भावरोग के वैद्य हैं, इसलिए आप कृपा करके बतलाइए क्यों हमारा चित्त दुखी है। तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने अर्थ धर्म काम और मोक्ष की बातें पुराणों में शास्त्रों में इधर उधर लिखा है। ऐसे आपने वैसे आपने कृष्ण लीलाओं का वर्णन नहीं किया, आपने साफ साफ ये नहीं किया कि जगत के सृष्टि करने वालों ने भी उनके भी आराध्य कौन है, कृष्ण ही सबके आराध्य हैं तुमने नहीं लिखा और उनकी लीलाओं का वर्णन भी तुमने नहीं किया और मनुष्य मात्र का क्या धर्म है ये भी साफ साफ नहीं बतलाया। कभी शिव पुराण में शिव को ही सबका अधिक वर्णन किया, कभी दुर्गा जी को सबको जननी कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को उनसे ही बतलाया। ठीक है तुम कहीं गणेश जी को सबसे अधिक मान्यता दी, किंतु ये साफ साफ आपने नहीं बतलाया कि स्वयं भगवान कौन है जिनसे सबकी भगवत्ता है, उनके लीलाओं का वर्णन नहीं किया। कि आपने लिखा ये विश्व ब्रह्मांड का रचना करने वाला जो सुधा मैया से डर कर रोता है, मैया ने उस सुप्रीम लॉर्ड को बांध दिया, ओखल से बांध दिया, तो नहीं तो आपने ये लिखा जो सखाओं का वो जूठा भी खाते हैं, वो चारण करते समय किसी का जूठा ब्रह्मा भी किसी का जूठा नहीं खाते और वो परब्रह्म होकर के भी सखाओं का जूठा खाता उनसे हार जाता है खेलों में, ये बतलाया तुमने। क्या तुमने बतलाया वो परब्रह्म व्यक्ति से ही विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि रचना और ध्वंस करने वाला और वो श्रीमती राधिका जी के पैरों में पैया पड़ता है लिखा? नहीं, तो मैं जानता ही नहीं। हाँ, भक्ति योग के द्वारा मन को स्थिर करो और तुम्हारे हृदय में ये सब बातों की स्फूर्ति होगी, तब तुम समझ सकेगा, अन्यथा नहीं समझेगा। तो उन्होंने गंगा के तट पर समाधि लगाई। भक्ति योग मैंने क्या, मैं कुछ नहीं जानता, सुनो इधर असो बात मत करो, नहीं तो समझ नहीं सकेगा। उन्होंने भक्ति के द्वार माने क्या, शरणागत मैं कुछ नहीं जानता, समर्पण करो और उनको स्मरण करो। बस उन्होंने समाधि लगाई और उसमें देखा क्या, अपश्यत पुरुषम पूर्णा, उस परम पुरुष को देखा, ब्रह्मा विष्णु के भी आराध्य नारायण जी से निकले हैं, लक्ष्मी दुर्गा इत्यादि सब, राम भी जिनसे निकले हैं, राम ही कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं और माता से नंद बाबा यशोदा और गोपियों से घिरे हुए इस पूर्ण पुरुष को देखा, कृष्ण की रासलीलाओं का भी दर्शन किया और जो जो जितनी भी लीलाएं हैं सब लीलाओं को जैसे फिल्म में देखते हैं वैसे उन्होंने देखा। तब जीवों की और देखा क्या, जीव भगवान को भूल करके इस जगत में आकर के दुख भोग रहा है और कुछ जीव भगवान का भजन करके इस जगत से उस जगत में जा रहा है, ऐसा समाधि में देख करके जस्या वायु सूर्यमाणायम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते, उनका शोक मोह भय, इससे शोक मोह भय भाग जाए, संसारी का शक्ति कट जाए, जीव का चित्त निर्मल हो जाए और भगवान को प्राप्त कर सदा उनकी सेवा में लग जाए, ये देख कर खुश। यह श्रीमद् भागवत। श्रीमद भागवत में पहले व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को उनकी सभा में श्रीमद भागवत का 7 दिन का सप्ताह किया, उसमें सारे देवता इत्यादि सभी लोग आ गए। देवता लोग बोले जी आप हमसे अमृत ले लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए और हमको श्रीमद भागवत दे दें। बजारे मूर्ख, ये पीने से तो और मत अहंकार बढ़ जाता है, अमृत तुम लोग का अहंकार और ये सब गया कभी, उस अमृत से लाखों कोटि गुणा भागवत का ये प्रेम रस है ये तो। और फिर उनको सुना आरंभ किया कहां से, ये कलयुग आ रहा है, कृष्ण अपने धाम में चले गए लीलाओं के साथ। जब अपने धाम में चले गए तो करीब करीब 130 या 230 वर्ष बाद में परीक्षित महाराज जी को श्राप हुआ, 7वें दिन तक्षक दसेगा और उस समय में सारे रहस्य विहस्य लोग वहां पर एकत्र। उनका प्रश्न ये रहा जो अभी तुरंत मर जाने वाला है उसका क्या कर सकते हैं, जो आज न कल न परसों न बरसों मरेगा सभी मरेंगे, उनका क्या कर सकते हैं। इसी के उत्तर में ये श्रीमद् भागवत आरंभ हुआ। कलयुग आया, कलयुग का इतना प्रभाव है कि आज संतों में भी देखिए राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े अलिशान बिल्डिंग हैं, जो साधारण लोगों को नहीं नसीब है, राजा महाराजाओं को नहीं। साधु वही है जो आज गल बजाए खूब अधिक अधिक वैभव जिसका हो, जिसके आश्रम में हाथी झूमते हो, स्त्रियां अब केवल फोटो को रंगने से केशों के ऊपर में उनका श्रृंगार रह गया। पहले जो अपने स्वास्थ्य का जो श्रृंगार था वो अपने आप लाल रहते थे, उसको रंगाई की जरूरत अब हो गई। और कलयुग में कुछ दिन आने पर पश्चिम की हवा आएगी, दिन में 10 बार डाइवोर्स होगा, पति स्त्री को स्त्री पति को, आप लोग बचे रहेंगे अभी हिंदी हमारे सनातन धर्म की यदि वैदिक संस्कृति आप में है, आपकी बेटियों पर भी इसका प्रभाव न पड़े, बेटों पर भी प्रभाव है। बड़े जोर शोर से जल्दी से शीघ्र आ रहा है कलयुग। ऋषि लोग घबराए, नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और व्यास के शिष्य सुमन ने प्रश्न किया, सुत गोस्वामी महाराज आप तो सब शास्त्रों को जानने वाले हैं और सुखदेव गोस्वामी से आपने ये सब श्रवण किया है, वेद शास्त्र उपनिषद भारत महाभारत पुराण सबका सार बात बतलाया आपके गुरु ने, अब बतलाइए कलयुग आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, आयु छोटी अरमान बड़े अधिक, वर्ल्डली डिजायर्स लाखों हैं और क्या मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, अच्छा करते हैं बुरा हो जाता है, मंद भाग्य और उपद्रव से भरा हुआ है, तरह तरह के रोग कलयुग में हो रहे हैं जो पहले नहीं थे अब रोग आ रहे हैं, वातावरण दूषित हो चुका है, उन्हें तो देखते हैं कि कुछ अच्छा है, उधर मथुरा वृंदावन दिल्ली पॉल्यूशन से भरा हुआ वातावरण अब ऐसा हो गया, तो ये सब कलयुग में होगा, विशेष करके आयु बहुत छोटी हो गई है, रोग बहुत अधिक बढ़ गए हैं नए नए, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप यह विचार करके हमें बतलाइए। उनके प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी जी, और उन्होंने कहा सबई पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति अहे पुत्र अप्यवधिता जय आत्मा संतुष्ट। धर्म अनेक नहीं है, एक ही धर्म विश्व का है, क्योंकि समस्त प्राणी भगवान के ही द्वारा बने हुए हैं। इसलिए धर्म दो नहीं हो सकता, इसलिए धर्म या प्रेम है, प्रेम भगवान के प्रति, आत्मा का आत्मा के प्रति। और जगत में जो प्रेम साथ दिखलाई पड़ता है ये प्रेम नहीं, काम है। श्री सर्वांग सुंदरी है, सब आपकी इच्छाओं के अनुसार में करने वाली है, तो बहुत प्यार कर रही है। और उसको लकवा मार गया, कोई काम नहीं कर सकती, तो दूसरी स्त्री से विवाह कर रहे हैं। स्त्रियों का भी ऐसा ही, पति यदि दरिद्र हो गया, अपाहिज हो गया, कमाई करके पैसा नहीं दे सकता, आजकल स्त्रियां बेहिचक उसको छोड़ देती, तो प्रेम नहीं है ये, अपने काम पूर्तियां के लिए हम विवाह शादी करते हैं, लोगों से प्रीति कर रखते हैं, प्रेम ये जगत में नहीं है। प्रेम होगा अपनी आत्मा से, परमात्मा से, ये प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, लेना देना कुछ नहीं, कोई भी आसक्ति की बात नहीं, कोई भी जागतिक लालसा नहीं, वह प्रेम भगवान से होगा, कृष्ण से होगा। कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, गॉड इज लव, लव इज गॉड। इसलिए शुद्ध आत्मा से, यह शरीर नहीं, शरीर क्या है अभी, रक्त मांस टट्टी पेशाब का ये थैली है ने? अब एक स्त्री बड़ी सबसे सुंदरी है और एक यहां पर सफेद हो गया, दाग जानते हैं ना, तो क्या होगा, कोई शादी नहीं करेगा। ऊपर से भगवान ने चमड़ी बड़ी सुंदर बना दी है स्त्री पुरुषों, चमड़ी हटा ली जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं। इसलिए समझो इसके अंदर में रहने वाला आत्मा और परमात्मा है, समस्त आत्माओं का कंट्रोलर वो परमात्मा है, वो है कृष्ण, हम उनसे भी छूट कर इस जगह। इसलिए बतलाया सवई पुंसां परो धर्म, वो जो भगवान कृष्ण जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, इंद्रियों से उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते, अपने हाथों से उसे इस हाथ से नहीं छू सकते, वो परम पुरुषोत्तम जो भगवान हैं, उनके प्रति भक्ति हो, अहेतु की भक्ति हो, कोई हेतु कारण न हो, किसी कारण से भक्ति होनी होती है, वो भक्ति नहीं कहलाती। अब यहां आई या कोई आया शंकर जी के दरबार में और उनके चौखटे को दबा रहा है और कहा जी प्रभु आपको एक रुपये का बताशा चढ़ाएंगे यदि हमारा लड़का पास हो गया, यदि हमारी लड़की की शादी हो गई तो 1.5-1.25 रुपये की आप बताशा या तो ये क्या है, ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है, इस चीज को समझिए, यह है तो कि भक्ति नहीं। और कंटिन्यूअस लगातार अनब्रोकन मधु की धारा की भांति ऊपर से गिराने से वो लगी हुई रहे, लगातार कंटिन्यूअस, तो ये भक्ति का एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं। भक्ति सभी लोग कहते हैं और करते हैं किंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं। अभी तो हम यही नहीं जान पाए नारायण कौन है, कृष्ण कौन है, दुर्गा मैया कौन है, गणेश जी कौन है, शंकर जी कौन है। अभी तो हम एक कैटेगरी में रखते हैं, एक ही सिंहासन पर रखते हैं। जब ये मालूम हो जाएगा ये छोटा सा ग्वारिया गायों का चारवाहा, बंसी बजाने वाला, घर घर में मक्खन चुराने वाला, यही सर्वोत्तम भगवान का भी भगवान है। भागवत में ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने इस चीज की उपलब्धि की। राम इत्यादि वही कृष्ण ही राम के रूप में आते हैं, शंकर जी उनके दासों के दास, दुर्गा जी उनकी दासी की दासी। असल में माया है राधिका जी, उनकी छाया है ये दुर्गा, एक ही चीज किंतु छाया और मूल। ये समझ करके यदि कोई भजन करे गुरु जी के अनुगत्य में, शिक्षा दीक्षा लेकर के कृष्ण से एक संबंध लेकर, कृष्ण से हमारा रिलेशन है, इसके आत्मा अंदर जो है उनका पार्ट पार्सल है, अंश है, ममई वंशो जीव रूप इत्यादि का है। ये कोई संबंध है, गुरु उस संबंध को बतला करके भगवान से नाता जोड़ देता है, इसी को दीक्षा करते हैं। इसलिए इसको मैं उदाहरण के साथ में बतला, यशोदा मैया को वो पर ब्रह्म आज उनकी भक्ति से पुत्र बन करके आए, ऐसा मत समझिए। देवकी के जो गर्भ से मथुरा में पैदा हुए थे कृष्ण, ऐसा मत समझिए। वहां पर आंशिक रूप में पैदा हुए थे, वो भी गर्भ से पैदा नहीं हुए, 16 वर्ष की स्थिति जैसे वाले, कानों में कुंडल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मथुरा में प्रकट हुए देवकी नंदन, और यशोदा के यहाँ गर्भ से निकले एक ही समय में। ये भगवान के लिए संभव है, हम लोगों के लिए संभव। इसलिए ये यशोदा नंदन, नंद नंदन ही परिपूर्ण है, और आंशिक रूप में मथुरेश कृष्ण है, देवकी और वसुदेव, ये सब बहुत तत्व बहुत गहरे हैं, ये समय अनुसार। तो यशोदा जी कृष्ण की मैया है। एक समय सुबह में दधि मंथन कर रही, 4 बजे के करीब, और एकदम भाव विभोर होकर दधि मंथन कर रही थी। बड़ी सुंदरी थी, नहीं तो कृष्ण इतने सुंदर कैसे होते। और हाथों के जो चूड़ियां हैं सुने की, वो परस्पर रुंझुन रुंझुन कर रहे जब खेच रही, और दधि मंथन से जो शब्द निकल रहा, ये घर घर जो शब्द है, ये मृदंग का पिछला भाग धिक धिक, और तान ये अगला भाग, उनको धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते मान। और एकदम भाव विभोर के मंथन करते हुए कृष्ण का लीला चरित्र ध्यान करती हुई गा रहे हैं, गोविंद दामोदर नाथ लेति, गोविंद दामोदर के लीलाओं का चिंतन कर रही है। इतने में कृष्ण उठ गए, मैया कहां मैया कहां, तो टोलने लगे, सर्व जानने वाले सब कुछ अंतर्यामी, और उनको पता नहीं कि मैया कहां गई, और वो कृष्ण मैया को ढूंढ रहे हैं किधर किधर, देखा जी मैया ने आंख पर देख, बहुत दूर पर दधि मंथन कर रही और गा रही है, बस पलंग से किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से उतरे, गोवर्धन धारण करने में उनको श्रम नहीं हुआ, गोवर्धन को धारण कर लिया, काली हरद में कूद गए, कोई परिश्रम नहीं, बराह रूप में पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल दिया, कोई श्रम नहीं, किंतु आज उनको बड़े मुश्किल से रोते रोते आंख में यशोदा जी ने काजल किया है और रो रहे हैं सुबकी लेकर के, तो आंखों से आंसू से इधर में आ रहा है, एक तो काले और काला आंसू, मानो गंगा जमुना बहने लग गया। बड़ी मुश्किल से मैया तक आए, मैया का दधि मंथन पकड़ लिया, देखा जी कौन कौन पकड़ लिया, देखा जी तो मेरा लाला बस गोदी में बैठा लिया लाड प्यार से, वो तो बंद कर दिया और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। इतनी में पास का वो दूध रखा था दही बनाने का, वो उछल उछल करके मानो गिरने लग गया गर्मी के मारे। मानो दूध दिए कराए यशोदा मैया हमें, यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध है कि विश्व ब्रह्मांड को पिला सकते, और कृष्ण की भूख और पेट इतना लंबा है कि सारा विश्व उसके अंदर में समा सकता है। इसलिए कृष्ण का ना पेट भरेगा ना यशोदा जी का दूध कम होगा तो हमारी सेवा ये कब लेगे। इसलिए आग में जल करके मरना अच्छा है, भक्त लोग ऐसा ही समझते। यशोदा जी को दया आई और बच्चे को कहा बैठ यहां, उतना 60,000 हाथियों का बल लेकर के कृष्ण को नहीं छुड़ा सकती। और यशोदा मैया ने एक हाथ पर बैठ गया, बैठ गया और रोने लगे। ये जो रो रहे हैं कृष्ण, ये भक्ति है कि नहीं? कृष्ण को रुलाना भक्ति है ना हंसाना भक्ति है? जब ऊपर से देखते हैं तो मालूम होता है यशोदा मैया कभी लठिया लेकर के मारू, अरे किसको मारू, विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक को भतीजे मारू और रोता है वो, तो ये भक्ति हुआ कि नहीं? भक्ति में तो है ये कृष्ण की सेवा को भक्ति करते, कृष्ण जिसमें सुख हो प्रीति हो। और यहां देख रहे हैं कि परब्रह्म रो रहा है, नहीं, यशोदा जी कहती हैं कि कोई भी हो मेरा ये पुत्र है, उसका लालन पालन करना, घरों में मक्खन चुराता है पीछे न जाने क्या करेगा, इसलिए उसको दंड देना। ये भक्ति का चूड़ांत है, इसे कोई और भक्ति बड़ी नहीं हो सकती। और चारुण मुष्टिक है, कृष्ण से लड़ रहा कंस का वो दूत है, कंस ने आदेश दिया इसको जैसे तैसे मारो, वृंदावन में हम लोग उसको नहीं मार सके किंतु अब मथुरा के गढ़ में इसको घेर कर हम लोग सभी मिलकर के इसको मारेंगे। इसलिए चारुण और मुष्टिक दक्षिण भारत के वो थे बड़े बड़े पहलवान, वो लोग कृष्ण को मारने के लिए उनको खींच लिया। और कृष्ण आज सोचा जब वो लोग आघात करते हैं तो कृष्ण से आज दिव्य रस की उपलब्धि हो रही है, बड़ा श्री कृष्ण को सुख हो रहा है, ये सुख होना भक्ति है नहीं? क्योंकि प्रतिकूल है, उसको जान से मारने के लिए वो लड़ रहा है, सुख देने के लिए नहीं। आज यशोदा मैया उसको ताड़न भर्षण कर रही है, डांट डपट कर रही है कृष्ण के भला के लिए, इसलिए वो भक्ति होगी, ये भक्ति नहीं। और एक चीज को समझिए, तब तक एक कीर्तन थोड़ा सा, सभी लोग कीर्तन करेंगे।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा
Yeah. Thank you.
लग रहे हैं, उमड़ घुमड़ करके बादले आ रही हैं, और झूला के लिए सखियां राधा जी को बुला रही हैं और बैठा करके झूला रही हैं। राधा झूलन न पधारो,
जय जय श्री राधे।
यहाँ पर झूला जी है तो वहां पर है
झूम आए बजरा राधे राधे झूलन प्रधान झूके आए Jump.
परो धर्मो भक्ति करो। ये जो भक्ति है इसकी श्रीमद् भागवत में और पुराणों में इसकी व्याख्या दी गई। ये भक्ति कहते हैं किसे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सुनेंगे। भक्ति साधारण चीज नहीं है, खूब अच्छी तरह से ध्यान देकर के सुनेंगे। ये भक्ति किसको कहते हैं? जब तन मन और वचन की जितनी भी चेष्टाएं हैं, तन की मन की वचन की और इससे भी अतीत भावना की जितनी चेष्टाएं हैं, बिना किसी सांसारिक डिजायर के साथ में, मैंने आकांक्षाओं किसी लात लपेट के बिना, किसी हेतु से नहीं, जब कृष्ण की सेवा होती है वो भी तैल धारावत अविच्छिन्न गति से, टूटने ना पाए तार भक्ति का, और ज्ञान और कर्म के अधीन न हो भक्ति, उसे ढकी भी ना, तो इसको भक्ति। अब इसमें भी दार्शनिक विचार हैं। अब ये जो कहा अन्नाभिलाषिता शून्य, कृष्ण के पद प्रसन्न करने के अतिरिक्त उनकी सेवा से, उनका नाम करते हैं, उनका सेवा करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं, कोई भी संसारी लालसा न रहे, ये मानो, और आपकी भक्ति कर्म और ज्ञान के अधीन न हो। मतलब क्या, कर्म करना तो अनिवार्य है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, किंतु ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे भक्ति तुम्हारी ढक जाए। जैसे माता पिता की सेवा करने से, देवताओं की सेवा करने से कृष्ण की भक्ति होती है, ऐसा मान करके चलेंगे तो भक्ति ढक जाएगी। जैसे हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों, बड़े दानी थे ना और सत्यवादी थे, ऐसा करने से तब भक्ति होगी, भक्ति आपकी ढक जाएगी। ज्ञान, यदि ये ज्ञान रहे, ऐसा जगत में सर्वत्र प्रचार हो रहा है, आप लोग भी सुने, ओ मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वपल्लवितम ब्रह्म, सारे जगत के सारे प्राणी ब्रह्म ही हैं, ऐसा समझ करके मैं ही ब्रह्म हूं, तो रोग से बिलबिला कर रहा है, ब्रह्म बिलबिलाता है, बिलिया ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के सेवक हैं, कोई भी जीव ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान का सेवक, भगवान में मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी माया से हम अलग हैं और ब्रह्म, और जब माया हट जाएगी तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, या धारणा बहुत ही ये मत रखेंगे, मैं अभी अशुद्ध हूं, पीछे शुद्ध होकर के भगवान का सेवक बनूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, ये भावना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान की शरणागत, इसको कहते हैं भक्ति, कर्म ज्ञान के बिना ठगी। और आपकी भक्ति कैसे हो, कृष्ण की सेवा ऐसी तैल धारावत अविच्छिन्न गति, निरंतर लगी हुई, ये भक्त कृष्ण की सेवा के लिए ही कृष्ण की सेवा करो, उसे अपना कुछ मत मानो। देखो अयोध्या में आइए, कैकेयी के वरदान से महाराज दशरथ वर दे दिए हैं दो, एक से भरत की राजगद्दी को और दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। वशिष्ठ जी और सब लोगों ने कैकेयी को समझाया, महाराज दशरथ ने किंतु मानी नहीं। रामचंद्र जी सुने, राज्याभिषेक जिस दिन होने था उसी दिन सीता और लक्ष्मण के साथ में वन में चले गए। महाराज दशरथ हा राम तीसरी बार राम नहीं कर सकते, प्राण छोड़ दिए अपने पुत्र के गिरह में, व्याकुल होते थे छोड़। भरत और शत्रुघ्न निहाल में थे, वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया और बुला करके तब ये सब समाचार कहा है। भर जी आए, देखा जैसे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, भाई जंगल में चला गया, पिताजी मर गए। कैकेयी बोली, ये तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, ये कहा तुम आज से मेरी मैया नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, सदा के लिए संबंध विच्छेद करता हूं। आज यदि राम प्रसन्न बिगड़ते नहीं तो तुम्हें तलवार की घाट उतार देगा। ये कह करके कौशल्या के पास उनकी गोदी में बैठ करके रोने लगे और फिर सारी अयोध्या मंडली को लेकर वशिष्ठ जी को, माताओं को लेकर के चित्रकूट गए भैया को मनाने के लिए। जब चित्रकूट गए, भरत जी राम के प्रति बहुत ही समर्पित है, वो गए जाकर कौशल्या जी के यहाँ, गए पहले गए गुरु जी के यहाँ वशिष्ठ जी के यहाँ, इधर में आ जाओ आगे बहुत जगह है, आ जाइए वैद्य जी आगे बहुत जगह है। ओह कृष्णदास ना तुमरा आ गया, तुम ही आ गया। गुरु जी के पास में गए, गुरु जी पिताजी तो चले गए, अब आप ही हमारे पिता हैं, गुरु हैं, राम के राम आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। मेरी हिंदी आप लोगों के समझ में आ रही है क्योंकि आप तो महाराष्ट्र भाषी हैं, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। बोले जी गुरु जी आपकी बात को राम टाल नहीं सकते, इसलिए आप उनको समझा करके बुझा कर अयोध्या ले चलिए, राज्य का राजा का अभिषेक होने की जो तैयारी थी राम को वो सब तो ले आया हूं, इनको राज्य तिलक अभी दे करके लौट आ दीजिए। कैसे फर्क जी, राज्य मिलने पर भी उसे ठुकरा रहे हैं और राम को चाहते हैं मना करके ले जाए राजगद्दी पर बिठा, ये विचार ठीक है कि गलत है? ठीक है ना, कितना निस्वार्थी उनका प्रेम। गुरु जी बोले, भाई ये तो असंभव, मैं नहीं कर सकता। तो क्यों गुरु जी, मैं ये भूल कर रहा हूं? नहीं भूल नहीं कर रहे हो, बात तो ठीक है, किंतु जब उसने प्रतिज्ञा की है तो एक बात करो, उसके बदले तुम वन में जाओ और उसे कहो जो मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, तुम अयोध्या लौट जाओ। जी बड़े प्रसन्न हो गए, मैं आप ही अभी तैयार हूं जाने के लिए। फिर उन्होंने कहा जा राम ये मानेगा नहीं, वो धर्म पथ पर है, अडील है, मैं उसे नहीं कर सकता। फिर कौशल्या जी के पास में, मैया तेरी बात तो राम किसी हालत से नहीं टाल सकते, तू उनसे कहो चलो अयोध्या लौट चलो, जरूर चले आएंगे। कहा जी मैं कैसे कहूं बेटा, ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो धर्म पथ में भी हुई तो पिताजी के आदेश से आया है, अतः तुम मैया है, तुम्हारा अधिक आदेश का अधिकार है। बात तो ठीक कहते हो, किंतु माता और पिता के आदेश से आया है, मैं तो केवल माता हूँ। और माता और पिता, मैं कई माता और पिता दोनों के आदेश से आया है, मैं अकेले कैसे उसको कर सकती हूँ। बहुत समझाया किंतु उन्होंने कहा नहीं। फिर वे सुनैना जी के पास में गए, सीता जी के मैया, जनक जी भी आए, भैया जरा उनको कह दो जो वो कह दें। जनक जी, अच्छा मैं उनसे कहूंगी। बात बनी नहीं, दूसरे दिन विराट सभा हुई। एक तरफ में अयोध्या निवासी लोग सब बैठे, माताएं बैठी, और दूसरी तरफ में राम और वनवासी लोग बैठे, तीसरे श्रेय में ऋषियों की मंडली बैठी, बीच में महाराज जनक और वशिष्ठ जी बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जनक, अयोध्या की नाव टकमगा रही है समुद्र के बीच में, कोई खेलने वाला नहीं, अब तो ये डूबेगी नाव, और पतवार आपके हाथ में है, आप चाहे तो बचा सकते हैं। मैं कैसे बचा सकता हूं, आप गुरु हैं, ऋषि महर्षि हैं, आप सबका सार, धर्मों का सार जानते हैं, इसलिए आप बतलाइए। तो नहीं, मेरी बुद्धि इस समय भ्रमित हो गई है, क्योंकि मैं अयोध्या का हूं, अयोध्या का जल पान किया है, खाया है, इसलिए भरत की तरफ में मेरी झुकाव है। मैं निरपेक्ष नहीं हूं, मैं तो यही कहूंगा जो लौट जाए, किंतु आप राज ऋषि हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, आप सबके प्रति समदर्शी हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए आप इस समय जो उचित हो इनको बतलाए। राम का क्या कर्तव्य है, भरत का क्या, जब उन्होंने कहा, महाराज जनक हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, और उन्होंने कहा जी आप ऐसा कीजिए, मैं शुद्ध शुद्ध सत्य बात कर सकूं और उचित रूप में निर्णय इनको दे दूं। प्रणाम करके बोले, हे सभासदों, वशिष्ठ महाराज जी, राम लक्ष्मण, हमारी बात मानेंगे तो भरत जरूर मानेंगे। राम की तरफ मुंह करके पूछा, आप मानोगे तो मेरी बात, अतः जरूर मानेंगे। तो देखो, मेरा निर्णय यह है कि भरत की जीत हुई और राम जी यहां पर हार गए, भरत का प्रेम अगाध प्रेम है, रीति नीति कुछ नहीं जानता, रीति नीति जो कुछ होती है वो प्रेम में डूब जाता है। कृष्ण प्रेम के अधीन होकर के रीति नीति को कहां छोड़ करके बच्चों का जूठन खा रहे हैं, ग्वाल बालों का, और बच्चे उनको हरा देते हैं और उनके कंधे पर चढ़ करके चलते हैं घोड़े जैसे, चलो चल चल चल, ये प्रेम की रीति है। नीति नहीं है, ये परब्रह्म हमारे उपासक है, गोपियों के चरणों में झुक जाते हैं, ये प्रेम की रीति है, इसलिए प्रेम बड़ा है, उसकी रीति नीति ऐसी नहीं होती, इसलिए भरत का प्रेम अगाध है। किंतु हाँ, एक बात और है, राम का भी धर्म जो है वो अटल और अटूट है, वो प्रेम के समुद्र में डूब जाएगा तो डूब जाएगा, किंतु इधर से उधर टस से मस नहीं होगा। आ रहा है समझ में, राम का जो सत्य है, धर्म है, वैसा है कि प्रेम में डूब तो जाएगा, किंतु इधर से एक तिल भी इधर उधर नहीं होगा। इसलिए भरत की तो जीत हुई, और भरत जैसा कहे वैसे राम को करना पड़ेगा। किंतु हाँ भक्त एक बात सोचो, इसके पहले तुमको एक चेतावनी देता हूं, धर्म की तो रीति वैसी नहीं है किंतु अपनी एक मर्यादा है धर्म की, और मर्यादा वो क्या है, इष्ट देव जो होता है जिसका, उसके अनुसार साधो को चलना पड़ता है। इष्ट देव क्या चाहता है ये साधो को देखना पड़ता है। तुम प्रेम का साधक है, वो प्रेम के विषय राम तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुम देखो जो सचमुच राम क्या चाहते हैं और तब वैसा करो। मेरी बात समझ में आ रही है? यही धर्म की प्रेम की रीति है। हम अपने सार में जो कृष्ण की सेवा करते हैं वो कृष्ण की सेवा नहीं है, कृष्ण क्या चाहते हैं, कैसे वो प्रसन्न होंगे भगवान, इसका नाम भक्ति। अपने मन से तुम सेवा करो, अपने मन से उनको खिलाओ, नहीं खाएंगे, उनके रुचि के अनुकूल हो, वो क्या चाहता है इसको देखो। भरत राम से पूछो जराम कैसे सुखी होंगे, और ठीक वैसा ही करो, अपनी इच्छा मत लड़ो। या अपनी इच्छा से तुमको ये अच्छा मालूम पड़ता है, या रामचंद्र जी चले जाते तो जगत के लोग कहेंगे जी वाह भक्त इतना बड़ा भारी धार्मिक था, राज्य को ठुकरा दिया और उसे तुम सुखी हो गए, भरत हमारे भैया राज सिंहासन ले लिया अब मैं सुखी हो गया। ये तो भक्त की इच्छा के अनुसार है, राम क्या चाहता है पूछो कैसे सुखी होगा। इसलिए अपने इष्ट देव से कृष्ण से पूछो क्या चाहते हैं और वैसे ही करो जैसे गोपियों ने किया। गोपियों ने कृष्ण के अनुसार ही वो बेश रचना करती हैं, श्रृंगार करती हैं, किस लिए, अपने लिए नहीं, बेश रचना करती हैं, श्रृंगार करती हैं, सोलह श्रृंगार धारण करती हैं कृष्ण के लिए, अपने पति को, उनकी मर्यादा को, माता पिता के सद्भावों को ये गोपियां किस लिए छोड़ देती हैं, कृष्ण के लिए। काफी गोपियां ही छुड़ा जाती हैं और कृष्ण को कहते हैं कि हमारे कुंज से दूर चले जाओ, सामने आत्मा, किस लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जो उल्टे प्रेम से ये कृष्ण प्रसन्न होते हैं, प्रेम नदिया की बहे उल्टी धार, प्रेम नदिया है ना, ये उल्टी धार बहती है प्रेम की। गोपियां जानती हैं ये कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, जिस प्रेम में कोई बांध नहीं है, रोज रोज का मिलन सहज रूप में हो सकता है जैसे पति और पत्नी का, उसमें प्रेम शिथिल होता, प्रेम तो है शिथिल है, आज जो प्रेम कुछ बाम्य भाव लेकर के होता है जैसे गोपियों का था, तुनक जा रही है कृष्ण के लिए, इसलिए उस प्रेम में कृष्ण को अधिक प्रसन्नता होती है। उसी तरह से यहां कहते हैं भरत तू देख राम से पूछो, गए और बोले, राम ने राम को प्रणाम किया और बोले आज मेरी आंखें आप महाराज जगे खुली, और गुरु जी को प्रणाम किया, आज मैं बहुत दिनों से भटक रहा था। प्रेम किसको कहते हैं, सेवा किसको कहते हैं, मैं आज तक समझ नहीं रहा था, अपनी मानो अपनी भावनाओं को ही मैं समझ, ऐसा करने से वो सुन अभी तक समझ रहा था, किंतु बात गलत है, आपने आज समझा दिया, आज मैं समझ गया। और ये कह के राम के पास मैं दंडवत प्रणाम किया, प्रभो भाई भैया अब तुम बतलाओ तुम किसमें सुखी हो, मैं क्या करूं, जैसा कहोगे वैसा ही करो। तो भाई तो महाराज जनक ने कह दिया ये तुम्हारी जीत हो गई, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार में अयोध्या का राज्य मैंने ले लिया, ऐसा ही समझो, अब अयोध्या का राजा मैं हूं और मैं ये चाहता हूं उसे खुशी होगी कि महाराज दशरथ का पिताजी का दिया हुआ वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मैं राजा हूं अयोध्या का, मैं तुमको आदेश देता हूं आदेश कि मेरे प्रतिनिधि हो करके, मंत्री हो करके और राज्य को संभालो 14 वर्ष, जब तक कि नहीं आ जाता और मैं यह सब काम करके तुम्हें आ जाऊंगा। एक दिन की भी विलंब होगी, भरत जी ने कहा मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा जैसे मैं जाऊंगा तो रहूंगा कैसे, अपने चरणों की पादुका दीजिए और उसकी मैं पूजा करूंगा, उसी से आदेश लेकर के मैं राज्य का संचालन। रामचंद्र जी ने अपनी चरण की पादुका उनको दे दी, सिर पर लेकर के माताओं और गुरु और अयोध्यावासी के साथ। इसको कहते हैं भक्ति। इष्टदेव हमारा क्या चाहता है, हम पहले गुरु से आरंभ करें, हमारे गुरु क्या चाहते हैं। गुरु यही चाहते हैं जैसे तैसे तुमको चाहते हैं अपना चित्त पवित्र करो, संसार में अपने कर्तव्य को करो किंतु आसक्त मत हो। कर्तव्य तो करो, आसक्त मत हो, माता पिता स्त्री पति पुत्र आसक्त मत हो, कर्तव्य निर्वाह करो जीवन निर्वाह के लिए बस। आसक्ति कहां हो, पहले गुरु के चरणों में और इसके बाद में गुरु उसको शुद्ध करके कृष्ण और राधा जी के चरणों में लगा दे, ये भक्ति, तब हम भक्ति भजन कर सकते। जिसका गुरु की निष्ठा नहीं है भगवान का भजन क्या करेगा, जानता नहीं कि भगवान कौन है, गणेश जी हैं कि शंकर जी हैं कि नारायण हैं कि कृष्ण हैं कि राम हैं कि क्या है, इसको पता ही नहीं है, उसकी एकाग्रता चित्त कैसे होगी। इसलिए सबसे पहले गुरु जी के चरणों में शरणागत हो। किंतु गुरु का भी लक्षण शास्त्र में बदला गया, अरे गहरे जैसे तैसे गुरु नहीं हो सकते, जो माया मोह में चक्कर का रहे हैं काट रहे हैं, जो अर्थ की पिपाशा जिनके अंदर में है, संसारिक कामनाएं वासनाएं हैं, जिनका काम क्रोध लोभ नहीं गया, वो गुरु नहीं है। गुरु कौन है, वो समस्त वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों का तात्पर्य समझता है और आपकी कोई भी शंका को दूर कर सकता है और परब्रह्म की कृष्ण की अनुभूति हो भजन परायण। और उसका गौण लक्षण यह है, संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं रहेगी, संसार की कोई वस्तु उसको नहीं चाहिए, रुपया पैसा पद मर्यादा धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। जिस गुरु को इस चीज का लोभ है वो गुरु गुरु नहीं है, जो हृदय की मैल को आसक्ति को काट करके भगवान के चरणों में लगा। इसलिए ऐसा गुरु यदि मिले भगवान से प्रार्थना करो और वो हमारा करो। क्या घंटा समय हो गया, समझ रहे हैं, इसलिए गुरु का लक्षण यह है। समस्त सारों में शास्त्र के विचारों में पारंगत और परब्रह्म की अनुभूति हो, जगत में कहीं भी आसक्ति न हो, संसार की कोई कामना वासना नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति गुरु होकर के तब हमारा उद्धार कर सकता, हमारे चित्त को कृष्ण में लगा सकता है, तब वो शुद्ध भक्ति हो सकती है। इसलिए जहां तहां भक्ति का प्रयोग मत करो, जैसे माता पिता की भक्ति, शंकर जी की भक्ति नहीं, भगवान के प्रति भक्ति हो। भगवानों में भी स्वयं भगवान जो कृष्ण है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। नंदन नंदन यशोदा नंदन सर्व के आरंभ। इसलिए अंत में मैं कंक्लूजन ये कहता हूं, आराध्यो भगवान ब्रजे शतनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वधुवधु वर्गेन जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा कुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रातरो नः परः। आराध्यो भगवान ये कृष्ण ही, कौन कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र माने नंद, नंदनंदन यशोदा का, उससे भी यदि राधा का, ये हमारे आराध्य, ऐसा ही समझना। उनकी आराधना करने से सारे भगवत अवतारों की आराधना 56 कोटि देवताओं की आराधना प्राणी मात्र की आराधना हो जाती है, ऐसा विश्वास करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। एक भगवान के अंतर्गत में सारा विश्व ब्रह्मांड है, उनके एक लोम कूप में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड है, और सबकी तो बात क्या है। इसलिए तस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, एक कृष्ण के प्रसन्न होने से राम से लेकर के निसिंह भगवान से लेकर के नारायण से लेकर के जितने अवतार शंकर दुर्गा कार्तिक इत्यादि सब 56 ब्रह्मा विष्णु महेश सारे प्राणी सारे जीव जंतु सभी प्रसन्न हो गए। इसको उदाहरण है देने से समय अधिक हो गया, इसलिए ऐसा समझ करके आराध्य हो तो कृष्ण है, और धाम वृंदावन में उनकी आराधना होनी चाहिए। जब उनका नाम लो, जब उनकी आराधना करो, समझो मैं वृंदावन में। वृंदावन कैसा? सुरम्य जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी, मथुरा नगरिया टेढ़ी, जसोदा जी टेढ़ी, कृष्ण के भवने टेढ़े, कृष्ण की मुरलिया टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, और कृष्ण की गोपियां भी टेढ़ी, सभी टेढ़े ही हैं। ऐसे ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर कि सब समय बसंत ऋतु छाई रहती है, यहाँ पर सघन कुंजे हैं जिसमें राधा कृष्ण लीलाएं करते हैं, गिरिराज गोवर्धन, नंदगांव बसंत, ये वृंदावन धाम। और आराधना कैसी? गोपियों जैसे आराधना, रम्या काचित उपासना बज बज भर गई। गोपियों ने कृष्ण की जैसी आराधना की, कैसी आराधना? भृगुवी तान करके उनको बाण से लक्ष्य करती है, फुल्लेंदी व्रकांत बिंदु वदन बरहावतंसम श्री वत्सांग उदार कौसुक धर्म पीतांबर सुंदर गोपी नाम नैनोपलाचित तनुम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलबेन्दु वादन। गोपियां की आरती उतारती हैं कैसे? अपनी टेढ़ी नजरिया से, कृष्ण अपनी नजर से ही उसको अंगीकार कर लेते हैं। ये उपासना जो है गोपियों जैसी, यही सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम, श्रीमद् भागवत ने भ्रांत और अमल, कोई मल नहीं है, पुराणों की बातें मल रही थी, मल युक्त है। कहीं कह दिया जी श्रीराम को आराधा जी परस्पर अभिशाप देकर के इसे रखते हैं, कहीं कुछ जगत की साधारण लोगों की निष्ठा के लिए कहा, वहां पर सापाशापी और ये सब माया नहीं है, काम क्रोध लोभ मय नहीं है वहां। तो श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण है, जैसा कहते हैं वही धर्म है। जहां वेद में उपनिषदों से और श्रीमद् भागवत से विरोधी भाव का टक्कर हो, श्रीमद् भागवत की बात नहीं, क्योंकि वेदों का गायत्री का भाष, वेदों का अस्त्र विस्तार कर महाभारत का तात्पर्य, ये श्रीमद् भागवत। इसलिए ये प्रमाण किसी को चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है, सचिनंदन गौर हरि के रूप में कलयुग में आए, उनका यही विचार है। ऐसा ही रख करके आप लोग भजन साधन, समस्त साधनों का सार ये नाम है भगवान नाम। कौन नाम? जो वेदों का सार है, महामंत्र जिसको कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये सबका कृष्ण एक सेकंड के अंतर्गत लाखों विश्व ब्रह्मांडों को प्रणय कर देंगे, नई सृष्टि कर देंगे, बड़े सुंदर हैं, अलबेले हैं और बड़े दयालु, ओशन ऑफ मर्सी है, कृपा के सागर है, सारी शक्तियां नामों में भरती है, सोलहों में। इसलिए जो कृष्ण नहीं कर सकते ये नाम कर देगा, इसलिए नाम के प्रति आप लोगों की निष्ठा हो, और उस निष्ठा के साथ में चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में खाए पिए न खाए पिए स्नान किया नहीं किया कोई बात नहीं, ये कृष्ण दिया जाए। अरे मुसलमान लोग वो क्या पढ़ते हैं, नमाज, तो उठक बैठक कसरत करते हैं, इसमें कसरत करने की जरूरत नहीं, बड़े प्रेम से जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा। क्या लगता है इसमें, क्या लगता है ऐसा कहने में? अरे कुछ नहीं आता है, कृष्ण कृष्ण कहने में, अरे कृष्ण तो जरा टेढ़ा है, अरे राम कहो, राम भी नहीं आता, अच्छा तुम मरा करो, मराम राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगस्त जी समुद्र को पान कर गए नाम के बल पर, शंकर जी इसी से सृष्टि संहार कर, इसलिए ऐसे नाम के प्रति आप लोगों की रुचि नहीं है तो मनुष्य नहीं जानवरों में भी गधे हैं, ऐसा समझ करके आज ही से हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे।